कोर्टरूम में अर्पिता स्किन कलर की कॉटन की साड़ी के ऊपर ब्लैक कोट पहने जज के सामने खड़ी थी। अपनी दलीलों से ऑपोजिशन के लॉयर का मुंह बंद कर चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ अजीब सा सुकून झलक रहा था और उसका छोटा सा चेहरा चांदनी सा चमक रहा था। जज ने लंच के बाद फैसला सुनाने का ऑर्डर दिया और चले गए। अर्पिता ने एक नज़र दूसरी तरफ बैठे लॉयर को देखा। विजयी तीखी मुस्कान उसके लबों पर उभरी, जिससे वो लॉयर खींच गया। अर्पिता ने गहरी सांस ली। इतने में उसके असिस्टेंट ने उसकी ओर पानी का ग्लास बढ़ा दिया। अर्पिता ने हाथ दिखाकर मना कर दिया और अपने पेट को अपनी हथेली से सहलाने लगी। चेहरे पर दर्द की कुछ बूंदें पसीना बनकर बिखर गईं। उसने अपनी आंखों को मूंद लिया। ठीक उसी वक्त किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया और जानी पहचानी सी चिंता भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। अर्पिता, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है तुम्हें? हॉस्पिटल चलें? उस शख्स ने लगातार कई सवाल किए, जिसे सुनकर दर्द में भी अर्पिता के लबों पर मीठी सी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अपनी पलकों को उठाया। निगाहें सीधे उन निगाहों से टकराईं जिसमें अक्सर अपने लिए प्यार के समुद्र को हिलोरे मारते देखती थी, पर आज वहां अजीब सा दर्द, चिंता और फिक्र छलक रही थी। निशांत उसके सामने खड़ा था और उसी ने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर थामा हुआ था। अब ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द हो रहा है। निशांत ने नाराज़गी से उसे घूरा, फिर संभालकर चेयर पर बिठा दिया और अपने रुमाल से उसके चेहरे पर बिखरी पसीने की बूंदों को पोंछने लगा। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि इतना गुस्सा मत किया करो, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुम कभी मेरी नहीं सुनती और हर बार अपने वजह से खुद को तो परेशान करती ही हो, साथ ही मुझे और मेरे बच्चे को भी परेशान कर देती हो। डांट भी रहा था तो बड़े प्यार से। उसकी डांट भी अर्पिता को मीठी लग रही थी। अर्पिता ने अपनी लबों पर बिखरी मुस्कान को समेटा और आंखें चढ़ाते हुए नाराज़गी से सवाल किया, बस आपका ही बच्चा है? हाँ, सिर्फ मेरा बच्चा है, क्योंकि उसकी फ़िक्र सिर्फ उसके पापा को रहती है। निशांत ने नाराज़गी भरी निगाहों से उसे घूरते हुए जवाब दिया तो अर्पिता ने नाक से कोरते हुए अजीब सा मुंह बना लिया। चलो कुछ देर बाहर, खुली हवा में बेहतर महसूस होगा तुम्हें। अपनी सख्ती छोड़कर एक बार फिर अर्पिता से बेहद प्यार से बात कर रहा था वो। अर्पिता ने सर हिलाया और दोनों कोर्टरूम से बाहर चले आए। निशांत ने बैग से जूस की बोतल निकालकर उसे दी तो अर्पिता धीरे धीरे जूस पीने लगी और निशांत उसके पेट को अपनी हथेली से सहलाने लगा, जैसे अपने बच्चे को शांत होने कह रहा था। उसे देखकर अर्पिता के लबों पर मीठी सी मुस्कान बिखर गई। बीते 7 महीने उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। हाँ, 7 महीने, क्योंकि अब उसका 9वां महीना चल रहा था और डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। उसके बावजूद आज वो यहाँ कोर्ट में खड़ी केस लड़ रही थी, क्योंकि निशांत उसके साथ था और उसे निशांत के साथ साथ उसके पूरे परिवार का सपोर्ट मिला था। उस दिन के बाद से सब उसे पलकों पर बिठाकर रखने लगे थे। उसके काम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, बस सब उसका ख्याल रखने में जुट गए थे, जिनमें सबसे आगे निशांत था। एक अच्छे जीवनसाथी का हर फर्ज निभाया था उसने, हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहा। उसका सपोर्ट था तभी वो अब तक अपना काम कर रही थी, जबकि निशांत उसके लिए छुट्टी लेता था। उसे लॉ फर्म छोड़कर आना, लेकर आना, पल पल की खबर रखना, हॉस्पिटल लेकर जाना, पैर दबाना, पीठ के मसाज करना, उसके नाज नखरे उठाना, उसकी फरमाइशों को पूरा करना, बेमतलब के गुस्से और मूड स्विंग्स को भी मुस्कुराकर सहजाना। निशांत ने क्या नहीं किया था उसके लिए। उसके प्यार ने अर्पिता के मन को न सिर्फ हर भय से आज़ाद किया था, बल्कि प्रेगनेंसी पीरियड जो तकलीफों से भरा था उसे खूबसूरत यादों और एहसासों में बदल दिया था। बाकी सब भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। जयंती जी ने माँ जैसे संभाला था उसे। तकलीफ होने पर आधी आधी रात को उठकर उसके पास आ जाती। राधिका भी उसे समझाती थी। जब अर्पिता वहाँ जाती तो वो और अनुपमा जी उसका बहुत ख्याल रखते थे। अर्पिता के लिए जितना नया अनुभव था उतना ही मुश्किल और चैलेंजिंग था, पर सबके साथ और प्यार के सहारे वो यहाँ तक पहुँच गई थी। सोचते हुए एक बार फिर तेज दर्द का एहसास उसे अंदर तक हिला गया और उसे यूं दर्द में देखकर निशांत घबरा गया। अर्पिता, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। आंखों को बीचे निशांत की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़े अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती अर्पिता ने उसकी बात सुनी तो इनकार में सर हिला दिया। नहीं, ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा था ना, अब कभी कभी ऐसा दर्द होगा, मैं कर लूंगी बर्दाश्त। कोर्ट का फैसला आ जाए फिर घर चलेंगे। फैसला तुम्हारे फेवर में ही आएगा, अभी हॉस्पिटल चलते हैं, आज ज्यादा तकलीफ में हो तुम, निशांत ने चिंतित स्वर में ये बात कही। इतने में लंच ब्रेक खत्म हुआ और अर्पिता की जिद पर निशांत को ना चाहते हुए भी उसे वापस कोर्टरूम में ले जाना पड़ा। जज ने फैसला सुनाया। जीत अर्पिता की किस्मत में लिख गई। इसके साथ ही उसके पेट में तेज दर्द उठा। शायद इस जीत को सेलिब्रेट करने, उनके पास आकर इस खुशी में शामिल होने के लिए उनका बच्चा भी मचल उठा था। अर्पिता को लेबर पेन शुरू हुआ। निशांत ने किसी तरह उसे संभाला। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। आज उसका बर्थडे भी था और सरप्राइज देने बीती शाम ही राधिका, माधव, राधव, आशुतोष जी और अनुपमा जी संग यहाँ आई थी। घर पर खबर पहुँचते ही हड़बड़ी में सब हॉस्पिटल पहुँचे। निशांत के हाथ पैर घबराहट के मारे ठंडे पड़ने लगे थे। माधव और त्रिशांत ने मिलकर उसे संभाला। कुछ देर में डॉक्टर सफेद टॉवल में लिपटी छोटी सी गुलाबी परी को अपनी बाहों में थामे बाहर आई। उसे देखते ही निशांत की आंखें भीग गईं। अर्पिता ठीक है, ये जानने के बाद उसके बेचैन दिल को करार आया। अनुपमा जी और जयंती जी दोनों ने बच्ची की नजर उतारी, बाकी सबने भी उसे प्यार किया। राधिका ने उस नन्ही परी को अपनी बाहों में थामकर खूब लाड किया, फिर माधव के पास चली आई। लीजिए, आपकी बेटी आ गई। इस वक्त माधव के चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी और लबों पर जो मुस्कान सजी थी, जिस तरह उसने एहतियात के साथ उस गुड़िया को अपनी बाहों में लेकर प्यार किया था, उसने राधिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जब उसकी अपनी बेटी होगी तो कितना खुश होगा वो, तब तो खुद को ही उस पर वार देगा। निशांत का इंतजार खत्म हुआ और अपनी गुड़िया को अपनी बाहों में थामे वो अर्पिता के वार्ड में दाखिल हुआ, जिसकी बेचैन निगाहें जाने कब से उनकी राह देख रही थी। निशांत उसे देखकर मुस्कुराया और उस नन्ही परी को अपनी बाहों में थामे उसकी ओर बढ़ गया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, इसे दिखाओ ना मुझे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अर्पिता बेचैनी से अपनी बेटी को देखने की कोशिश करने लगी तो निशांत ने अपनी बेटी को अर्पिता के बगल में लिटा दिया। देखो मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी है, बंदरिया जैसी दिख रही है। अर्पिता ने बुरा सा मुंह बनाया। उसकी बात सुनकर निशांत ने नाराजगी से उसे घूरा और वापस अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम अब दूर रहना मेरी बेटी से, इतनी क्यूट सी बच्ची को बंदरिया कह रही हो। आप पर गई है इसलिए बंदरिया जैसी दिख रही है, पर है तो मेरी बेटी। इतना दर्द सहकर मैंने इसे जन्म दिया है, लाइए मुझे दीजिए, मैंने नजर भर इसे देखा भी नहीं है, प्यार करना है मुझे इसे, अर्पिता ने तुनकते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर उसे बच्ची को लेने की कोशिश करने लगी। पर निशांत दो कदम पीछे हट गया और आंखें छोटी छोटी करके गुस्से से उसे घूरने लगा। अच्छा, मतलब मैं बंदर हूँ? नहीं, है तो इंसान ही, बस दिखते बंदर जैसे हैं, अर्पिता ने तपाक से जवाब दिया, जिसे सुनकर निशांत के चेहरे के भाव बिगड़ गए। अच्छी बात है, तो अब मैं अपनी बंदर जैसी शक्ल और बंदरिया जैसी शक्ल वाली अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आना मत दोबारा हमारे पास। निशांत ने उसे सख्त निगाहों से घूरा और जैसे ही जाने लगा, अर्पिता ने आगे की ओर झुकते हुए कमर पर से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। निशांत, मजाक कर रही थी मैं, दे दीजिए ना उसे मुझे, मैंने अपनी बेटी को नजर भर देखा भी नहीं, अपने सीने से लगाकर प्यार भी नहीं किया। उसके अल्फाजों में एक माँ की तड़प और बेकरारी छलक रही थी। निशांत कुछ नरम पड़ गया पर चेहरे के भाव जरा ना बदले।
अगर मेरी बेटी चाहिए तो पहले जरा सच सच बताओ, मेरी शक्ल बंदर जैसी है और मेरी गुड़िया बंदरिया जैसी दिखती है? नहीं ना, आप तो बहुत हैंडसम हैं और हमारी गुड़िया बहुत प्यारी, बिल्कुल बारबी जैसी, अब तो दे दीजिए उसे मुझे। निशांत ने थोड़े नखरे दिखाए फिर बच्ची को वापस उसके पास लिटा दिया। अर्पिता कुछ पल एकटक उसके चेहरे को देखती रही, फिर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। बाकी सब भी उससे मिलने आए। टू बी कंटिन्यूड।